मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 5 मार्च 2020 है और आज के इस AFEIS की लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए अब आज से एक नए विषय की शुरुआत करते हैं और विषय की ही शुरुआत नए तरीके से नहीं करते हैं। सच पूछे तो विषय को प्रस्तुत करने के तरीके में भी कुछ नयापन लाते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका संबंध हमारी धरोहर से है, हम ज्ञान की हमारी अद्भुत विरासत से है। आपने विदुर का नाम जरूर सुना होगा, महाभारत के अद्भुत चरित्र, आप यूं कह लीजिए कि महाभारत के संत। महाभारत में हमें दो सबसे बड़े फिलोसोफर दिखाई देते हैं, दो सबसे बड़े फिलोसोफर, उसमें एक हैं कृष्ण और दूसरे हैं विदुर। जहां तक देखिए युधिष्ठिर की बात है तो युधिष्ठिर के अपने कुछ नैतिक मूल्य हैं जिन्हें वो अप्लाई करते हैं, तो उन्हें फिलोसोफर के रूप में हम नहीं मानते। सच पूछे तो ये बहुत ही वो नैतिकवादी या कह लीजिए कि धर्म का आचरण करने वाले एक शासक हैं। तो दोस्तों विदुर बहुत ही अद्भुत नाम। जब हम अपने प्राचीनतम जो हमारे फिलोसोफर रहे हैं उनके बारे में सोचते हैं तो फिर एक फिलोसोफर का नाम उभर कर आता है और वह है चाणक्य, कौटिल्य। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए दोनों की बहुत बड़ी भूमिका आज भी हमारे जीवन पर है, मतलब हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दोनों एक नहीं है। सच पूछे तो ये जीवन के दो छोर हैं। जो चाणक्य की फिलॉसफी है वो राजनीति से जुड़ी हुई फिलॉसफी है, भले ही उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र क्यों न दिया हो लेकिन है वह राजनीति की बात। तो देखिए सीधी सी बात है कि जहां राजनीति की बात होगी वहां कहीं ना कहीं जिंदगी निरस्त हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, किनारे पड़ जाएगी, क्योंकि शुरू से ही यह देखा जा रहा है और भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जो राजनीति के तत्व हैं और जो जीवन के तत्व हैं उनमें मेल नहीं होता। काफी कुछ तो एक जैसा हो सकता है लेकिन अगर हम सोचें कि जो राजनीति के जो गुण हैं, राजनीति के जो लक्षण हैं, राजनीति की जो पॉलिसी है उसे अगर जीवन पर अप्लाई करें तो क्या होगा, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिंदगी दूभर हो जाएगी। और दूसरी ओर यदि हम अपने जीवन की नीतियों को राजनीति पर अप्लाई करें तो आप निरस्त हो जाएंगे, आप किनारे हो जाएंगे। तो क्या इन दोनों में कुछ मेल हो सकता है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली दोनों में मेल होना ही चाहिए। और इस मेल की बात की थी हमारे आधुनिकतम फिर एक और फिलोसोफर ने, वे थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी को आप यूं कह लीजिए कि हम चाणक्य और विदुर उन दोनों के बीच में खड़ा पाते हैं। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि थी हमारी जो पुरानी फिलॉसफी रही है। देखिए मैं उस वेदों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपनिषद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे जीवन की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं जब फिलॉसफी की बात यहां कह रहा हूं या फिलॉसफी शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो आप इसे इस तरह से मान करके ना चलें कि कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात है, नॉट एट ऑल। जो विदुर ने जो बातें कही हैं दरअसल वो जानी भी विदुर नीति के नाम से है, जानी जाती है कि विदुर नीति। तो जहां नीति की बात होगी वहां फिर कोई बहुत गहरी और ऐसी बातें नहीं होंगी जिनके बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो। तो दोस्तों विदुर महाभारत के बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं और उन्होंने जीवन से संबंधित जो बातें कही हैं उनका संकलन महाभारत का एक पर्व है, अध्याय कह लीजिए, चैप्टर है, उद्योग पर्व, उसमें विदुर के नीति से संबंधित इन बातों का समावेश किया गया है, संकलन किया गया है। बहुत ही अद्भुत फिलॉसफर और इतने संतुलित विचारक हैं ये कि मैं कभी कभी दंग रह जाता हूं कि इनके विचारों में ये जो इतना संतुलन दिखाई देता है, इतनी स्पष्टता दिखाई देती है, ये है कैसे? खैर हम उस बात पर नहीं जाना चाहेंगे। तो दोस्तों अब आपको मैं विदुर नीति के कुछ शब्द बता रहा हूं और इन शब्दों पर फिर हम आगे बात करेंगे। विदुर क्या कहते हैं और मुझे लगता है कि हम सबके जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुर्भाग्य यह है कि विदुर नीति के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, जानना चाहिए। इसी तरह से जो जनक जी ने जो गीता सुनी है, जो अष्टावक्र ने सुनाई है, मुझे लगता है कि हमें वो भी जानना चाहिए। हम कृष्ण की गीता के बारे में तो जानते हैं लेकिन जो अष्टावक्र ने जो जनक जी को गीता सुनाई है या उनका जो डिस्कशन है आपस में कह लीजिए, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जबकि वह भी बहुत ही अद्भुत संवाद है। खैर देखिए विदुर क्या बात कहते हैं। विदुर कहते हैं अमत्रम अक्षरम नास्ति, अमत्रम अक्षरम नास्ति, न नास्ति मूलम अनौषधम योजक तत्र दुर्लभ। ये बात वो कहते हैं, है ना। उस समय तो संस्कृत ही हमारी भाषा थी, संस्कृत में बात कही गई है, हिंदी में वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सच में मुझे लगता है कि अगर यह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए तो हम सब एक जबरदस्त किस्म के रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस से भर उठेंगे। रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस की बात मैं कर रहा हूं, जबरदस्ती के आत्मविश्वास से नहीं कि मैं तो ब्रह्मा हूं, फलाना हूं, फलाना हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, नॉट एट ऑल। कम से कम अपनी व्यर्थता का बोध तो खत्म हो ही जाएगा, और जैसे ही व्यर्थता का बोध खत्म होगा फिर क्या आएगा, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब देखिए कि यहां कहा क्या जा रहा है। यहां कहा यह जा रहा है कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं होता जिसमें मंत्र न छिपा हो। आप देख रहे हैं अक्षर, चाहे वो अंग्रेजी के अक्षर हो, हम यहां हिंदी के अक्षर ले सकते हैं, संस्कृत के अक्षर ले सकते हैं, हर अक्षर में देखिए वो वाक्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो शब्द की भी बात नहीं कर रहे हैं, अक्षर की बात कर रहे हैं। एक एक अक्षर जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना होता हो, अ प्लस क्षर, जिसका कभी क्षरण ना होता हो। अक्षर के महिमा को देखिए, आप समझने की कोशिश कि अक्षर कहा गया हिंदी में, इसका कभी क्षरण नहीं होता, ये कभी नष्ट नहीं होता, मरने की तो बात छोड़िए, इसका क्षरण ही नहीं होता। अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं होता जिसमें मंत्र न छिपा हो, मतलब हर अक्षर अपने आप में मंत्र बनने की ताकत रखता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ऐसी कोई जड़ नहीं है, रूप, जड़, मूल, जिसमें औषधि का गुण न हो। हर जड़ में औषधि बनने की ताकत है। और ठीक इसी तरह से कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई योग्यता न हो। मुश्किल ये है कि जो इसके पारखी होते हैं वो दुर्लभ हैं, जो इनकी इस ताकत को पहचान सकें वो दुर्लभ होते हैं, और जो इनके गुणों को पहचान लेता है वो इनको संयोजित करके या इनका उपयोग करके कुछ का कुछ कर डालता है। दोस्तों ये सामान्य सी बात विदुर जी ने कही है, आप सब भी इन पर इस पर विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और इस पर हम लोग फिर कल बात करेंगे। तो आज आप सबको मैंने एक जो होमवर्क दिया है इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा, और आपको लगेगा भी कि आज की तो बात आधी अधूरी ही रह गई, लेकिन दोस्तों आधी अधूरी बात नहीं है, बात अपने आप में पूरी है, बस ये है कि इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।